Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Baladeva, Jai Subhadra. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupad, 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 Jai Jai Prabhupad.
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भक्तवृंद की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में पांचवें स्कंद के 13वें अध्याय पर चर्चा है, इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे। ब्राह्मण उवाच, दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्वविभक्त कर्मदृक्, स एष सार्थोऽर्थ परः परिभ्रमन्, भवातविं याति न शर्म विन्दति। ब्राह्मण उवाच, दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्वविभक्त कर्मदृक्, स एष सार्थोऽर्थ परः परिभ्रमन्, भवातविं भवाटवीं याति न शर्म विन्दति ब्राह्मण उवाच दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्तकर्मद्रे स एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शर्म विन्दति दुरत्यये जिसको पार करना कठिन है अध्वनि सकाम कर्मों के पथ पर इस जन्म में कर्म करना इन कर्मों के आधार पर अगले जन्म में शरीर ग्रहण करना और इस प्रकार जन्म मरण के चक्र को स्वीकार करना अजया माया के द्वारा श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति निवेशितः सन्निविष्ट रजह तमह सत्व विभक्त कर्मद्रिक बद्ध आत्मा जो लाभप्रद कर्मों तथा उनके फलों को तुरंत देख लेता है जो सतो रजो तथा तमो गुणों द्वारा तीन समूह में विभक्त है सह वह एष यह स अर्थः सकाम अर्थ अर्थ परः धन प्राप्ति में तुला हुआ परिभ्रमण सर्वत्र घूमते हुए भव अटविम भव नामक जंगल अर्थात जन्म मरण का चक्र याति प्रवेश करता है न नहीं शर्म सुख विन्दति प्राप्त करता है। अनुवाद और तात्पर्य इस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त जड़ भरत ने आगे कहा, हे राजा रहुगण, जीवात्मा इस संसार के दुर्लभ के पद पर घूमता रहता है और बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करता है। प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तम के प्रभाव से इस संसार के प्रति आकृष्ट होकर जीवात्मा प्रकृति के जादू से केवल तीन प्रकार के फल, जो शुभ, अशुभ तथा शुभाशुभ होते हैं, देख पाता है। इस प्रकार वह धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति की अद्वैत भावना के प्रति आसक्त हो जाता है। वह उस वाणिक के समान अहर्निश कठोर श्रम करता है जो कुछ सामग्री प्राप्त करने और उससे लाभ उठाने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करता है, किंतु उसे संसार में वास्तविक सुख उपलब्ध नहीं हो पाता। तात्पर्य यह सरलता से समझ में आता है कि इंद्रिय तृप्ति का मार्ग कितना कठिन तथा दुर्लभ्य है। इस मार्ग को न जानने के कारण मनुष्य विभिन्न देहों में पुनः पुनः जन्म धारण करता है। इससे उसे संसार में कष्ट उठाना पड़ता है। इस जीवन में कोई यह सोचकर भले प्रसन्न हो ले कि वह अमेरिकी, भारतीय, अंग्रेजी या जर्मन है, किंतु अगले जन्म में उसे 84 लाख योनियों में कोई दूसरा शरीर धारण करना होगा। अगला शरीर कर्म के अनुसार तुरंत प्राप्त होगा, तब उसे वही शरीर स्वीकार करना होगा। किसी प्रकार के प्रतिकार से लाभ नहीं होगा। प्रकृति का यह कठोर नियम है। अविद्यावश जीवात्मा को अपना परम आनंदमय जीवन ज्ञात नहीं रहता, जिससे वह माया के प्रभाव से भौतिक विषयों के प्रति आकृष्ट होता है। इस संसार में उसे कभी भी सुख नहीं मिल पाता, किंतु वह उसी के लिए आध्यात्मिक अत्यधिक श्रम करता है। यही माया है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। 13वें अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। कृपया सब लोग एक साथ कहें।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते। असाधु साधु तदाईं अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो सुरा।
हरे कृष्ण। ये 13वां और 14वां अध्याय है, ये दोनों एक साथ हैं। एक साथ अर्थात जो 13वें अध्याय में कहा जाएगा उसी को 14वें अध्याय में बड़े विस्तार से समझाया जाएगा। इस अध्याय के अंत में परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे सुखदेव गोस्वामी से कि ये जो आपने अभी बताया ये सब बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए ठीक है समझना, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए समझना कठिन है, इसीलिए आप उसको और विस्तार से उसी चीज़ को समझाइए। तो फिर 14वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जो जो चीज़ें यहाँ कही गई हैं एक एक चीज़ एक एक शब्द लेकर उसको समझाएंगे। तो ये एक ऐसी कथा है जो 13वें अध्याय में जब कही जाएगी ये एक सूचनात्मक कथा है। अर्थात जैसे नारद मुनि ने, हमने देखा पिछले अध्यायों में कि नारद मुनि ने भी पहले ऐसी ही कथा राजा प्राचीन बर्हिषद को कही और फिर उसको समझाया कि उसका अर्थ क्या है। तो इसी प्रकार यहाँ जड़ भरत भी राजा रघुगण को एक ऐसी ही कथा सुना रहे हैं। काल्पनिक कथा है लेकिन ये कथा है जीव की। तो जीव कल्पना नहीं है, ना ही जीव का जीवन इस जगत में कल्पना है, लेकिन जो जीव के विषय में इसमें कहा जा रहा है कल्पना करके कथा को उसके इस भौतिक जगत के बंधन को प्रकट किया जा रहा है। बड़े ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं। तो आज केवल इस अध्याय में जो कहा गया है उतना ही वर्णन करेंगे और इसको फिर कल के अध्याय में जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी समझाते जाएंगे वैसे वैसे उसको समझाएंगे। बहुत बड़ा अध्याय होगा या विस्तार से अगर समझाने गए कल तो शायद समाप्त ना हो पाए, लेकिन आज ये अध्याय में ज़्यादा चर्चा विस्तार से समझाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि कल का अध्याय का विषय वही है। तो इस अध्याय में अब पिछले देखा हमने कि राजा रघुगण को ज्ञान दे दिया, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन अब और कृपा करना चाहते हैं जड़ भरत राजा रघुगण पर कि और अच्छी तरह से इसके जितने संशय हैं, जितने ये तर्क करना चाहता है, जितना भी इसकी अविवेक बुद्धि है इसको समाप्त करते हैं। तो इसीलिए अब आगे वो ज्ञान देते हैं। प्रश्न नहीं किया राजा रघुगण ने, लेकिन वो आगे ज्ञान दे रहे हैं और वो बताते हैं जैसे आज के श्लोक में हमने पढ़ा कि किस तरह ये जो जीव है वो उसके समान है जैसे एक वाणिक एक व्यापारी वन में प्रवेश कर जाता है कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, आनंद लेने के लिए। तो जीव की तुलना उससे की गई है। तो पहले 4 श्लोकों में जड़ भरत वर्णन करते हैं कि कैसे जीव इस भौतिक जगत में फंसता है, या दूसरे शब्दों में कैसे ये वाणिक ये व्यापारी वन में प्रवेश करता है और अलग अलग प्रकार के कष्टों को भोगता है। तो तुलना की गई है जीव की और वाणिक की। तो प्रवेश करता है उसको बहुत से कष्ट होते हैं, थोड़ा सुख लेने का प्रयास करता है, लेकिन वन में बहुत सारे हिंसक पशु हैं तो वो हिंसक पशु इस पर आक्रमण करते हैं, फिर आगे के श्लोकों में वर्णन किया गया है पांचवें श्लोक के आगे कि कैसे ये जो आनंद लेने के लिए ये व्यापारी इस वन में प्रवेश करता है, आनंद मिलता नहीं है उसको, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। कभी कोई हिंसक पशु है, कभी कोई आवाज आती है उसको, फिर एक बहुत बड़ा सर्प निगलने के लिए भागता है, अन्य जो विषैले सर्प हैं वो उसको काटते हैं, कभी वो भागता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता है और इसी के बीच में आनंद लेने का प्रयास करता। तो ऐसा वर्णन करीब 9 श्लोकों तक उन्होंने किया और फिर उसके आगे वो वर्णन करने लगे 19वें श्लोक तक कि कैसे जीव इस जगत में रहकर आनंद लेने का प्रयास करता है, अपने परिवार से, अपने संतान से, विशेषता अपनी पत्नी से, जो मैथुन सुख की कामना जो इस जगत के बंधन का प्रमुख कारण है, तो उसकी कैसे उस कामना से वो आनंद लेने का प्रयास करता है जी, इसका वो वर्णन करते हैं। और अंतिम श्लोकों में बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है कि जहाँ महाराज रहुगण अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्षमा याचना करते हैं जड़ भरत से, और इस मनुष्य जीवन के महत्व को और भक्तों के महत्व को प्रकट करते हैं। और अंतिम श्लोकों में बताया गया है कि कैसे एक भक्त के प्रति अगर अपराध हो जाए तो कैसे हमें क्षमा मांगकर उस अपराध को समाप्त करना चाहिए। तो ये पूरा अध्याय है। तो जैसे हमने बताया कि ये जो वन की बातें हैं ये कल करेंगे, क्योंकि अगले अध्याय में उसको समझाया जाएगा। तो आज इनसे जो शिक्षाएं हैं इन श्लोकों से, जैसे वन में वो प्रवेश करता है आनंद लेने के लिए, तो जो शिक्षाएं हैं उन पर प्रभुपाद के तात्पर्यों में जो बताया गया है उन पर ध्यान देंगे। तो जब ये वाणिक प्रवेश करता है वन में और आनंद लेने का प्रयास करता है, आनंद मिल नहीं पाता, प्रभुपाद तात्पर्यों में समझाते हैं कि मनुष्य जीवन ये केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए बना है। दुख इस शरीर में आते हैं, कष्ट इस शरीर में आते हैं, लेकिन अगर हम इस मनुष्य शरीर में भगवान की भक्ति करके इसको पूर्ण करने का प्रयास नहीं करते हैं तो और एक शरीर लेना पड़ता है। शरीर केवल दुख प्रदान कर सकता है, शरीर सुख प्रदान कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं, ये तो मृत है शरीर। तो ये चीज हमें सुख कैसे प्रदान कर सकती है? और हमारी मूर्खता यही है कि हम इस शरीर से सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं, जहां सुख है ही नहीं, दुखों का भंडार है। इसीलिए शरीर केवल दुख देता है, कष्ट देता है, मन कष्ट देता है, फिर वो स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर, केवल कष्ट का कारण। सुख केवल भक्ति में है, और जब तक व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, तब तक सुखों से उसका सामना हो नहीं सकता। और जैसे दूसरे 5वें श्लोक से आगे 9वें श्लोक तक वर्णन किया गया कि कैसे वो कष्ट भोगता है, तो इससे हम लोग सीख सकते हैं कि इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं, हम लोग बेकार प्रयास कर रहे हैं। जो चीज है ही नहीं उसको ढूंढने का प्रयास, उसको भोगने का प्रयास कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, ये भौतिक जगत भगवान स्वयं कहते हैं दुखालयम, दुख का भंडार है। और फिर भी जीव इधर से उधर, जैसे ही व्यापारी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान भागता है, सोचता है इससे थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा मुझे, जैसे जीव सोचता है कि थोड़ा मुझे पत्नी से आनंद मिल जाएगा, बच्चों से आनंद मिल जाएगा, परिवार से, समाज से आनंद मिलेगा, कहीं आनंद नहीं, आनंद है ही नहीं। जिस वस्तु को सुख कहा जाता है इस जगत में, वो केवल दो दुखों के बीच का समय है, एक दुख चला गया, दूसरा आने वाला है, उसके बीच के समय को सुख कहा जाता है। अर्थात इस जगत का सुख इतना ही है कि जीवन में दुख नहीं, बस दुख की अनुपस्थिति को सुख कहा जाता है, वो सच्चा सुख नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अब वो बीमार था तो उसको कैसा कष्ट हो रहा था, अब वो बीमार होकर बस थोड़ा सा ठीक हो गया तो उसको सुख कहा गया, लेकिन असली सुख तो हुआ नहीं, अभी तो केवल ठीक हुआ है, अब उसको शरीर से आगे जाकर सुख लेना चाहिए। तो ऐसी ही स्थिति है कि इस जगत में दुख की अनुपस्थिति को सुख कह दिया जाता है। बस अगर जीवन में दुख नहीं है, यही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन सच्चा सुख क्या है वो नहीं जानते, क्योंकि हर जीव हर व्यक्ति भयभीत रहता है। एक सुख दुख चला गया, दूसरा कभी भी आ सकता है, धन नहीं था धन आ गया, धन कभी भी जा सकता है, तो इसीलिए बस इसी को सुख मानते हैं। तो केवल सुख की अनुपस्थिति, दुख की अनुपस्थिति होना, ये सुख नहीं हो सकता। जैसे हम लोग जीवन और मृत्यु का वर्णन करते हैं तो हमारे संविधान में, भारत के संविधान में मृत्यु की परिभाषा दी गई है, और मृत्यु की परिभाषा कही गई है जीवन का ना होना, जीवन की अनुपस्थिति ये मृत्यु कहलाती है। लेकिन जीवन क्या है उसकी कोई परिभाषा नहीं, उसको नहीं बताया गया जीवन क्या है। मृत्यु क्या है, हाँ वो बताया गया है, क्या है, जीवन की अनुपस्थिति। लेकिन केवल जीवन की अनुपस्थिति होना, इसको मृत्यु कह दिया गया। मृत्यु है क्या, क्या मृत्यु का सत्य वास्तविक अस्तित्व है या नहीं, जीवन क्या है, इसको नहीं कहा गया। इसीलिए सुख की अनुपस्थिति या दुख की अनुपस्थिति होना ये सुख है, लेकिन सुख है क्या, किसी चीज की अनुपस्थिति दूसरे चीज को परिभाषित नहीं करती। जैसे हम कहें कि प्रकाश क्या है तो लोग कहेंगे कि अंधकार की अनुपस्थिति प्रकाश है, लेकिन प्रकाश तो केवल अंधकार की अनुपस्थिति नहीं है, प्रकाश में तो बहुत कुछ और तरीके से उसको परिभाषित किया जाता है, लेकिन केवल ये उसका लक्षण है। अंधकार का ना होना ये प्रकाश का लक्षण है, ये प्रकाश नहीं है पूर्ण, इसको जानिए। इसी तरह दुख का ना होना ये सुख का लक्षण है, लेकिन ये पूर्ण सुख नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम इसी को सुख मान लेते हैं, और यही जीव की सबसे बड़ी मूर्खता है इस जगत में कि हम दुख की अनुपस्थिति को सुख मान बैठे हैं, सुख के एक लक्षण मात्र को पूर्ण सुख मान बैठे हैं। जैसे आत्मा, आत्मा का लक्षण क्या है, चेतना, सारे शरीर में चेतना व्याप्त है, इससे प्रभाव पता चलता है कि आत्मा है, लेकिन क्या केवल चेतना को आत्मा कहा जा सकता, आत्मा तो सच्चिदानंद है, वो हम चेतना से अनुभव नहीं कर सकते। तो केवल किसी चीज के लक्षण से उस चीज को पूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसी तरह केवल दुख की अनुपस्थिति ये सुख नहीं हो सकती, और इस जगत में जिस सुख को हम लोग देख रहे हैं वो केवल यही है बस। इसीलिए ये जानना चाहिए कि इस जगत में सुख है ही नहीं। भगवान खुद कह रहे हैं जब सुख नहीं है, दुखालय मशाश्वतम, तो फिर हम क्यों उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने जो चीज बनाई, मानिए मान लीजिए किसी ने आपको कुछ चीज बनाकर दी खाने के लिए और कहा कि इसमें नमक नहीं है, और आप खाने के समय उसमें नमक का स्वाद लेने का अनुभव कर रहे हैं, कहां से आएगा। जिसने बनाया है उसने नमक डाला ही नहीं, जिसने बनाया है उसने शक्कर डाली ही नहीं, और आप उसमें मीठे का स्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं, और ऊपर से वो व्यक्ति कह रहा है आपको कि इसमें मीठा नहीं है, फिर भी आप खाने के समय आशा कर रहे हैं कि ये मीठा होगा, और खाने के बाद भी एक एक आप चम्मच खा लेते हैं, मीठा नहीं लगता, फिर सोचते हैं शायद दूसरे चम्मच में आएगा,
शायद नीचे कहीं पर होगा, तीसरे चम्मच ले लूं, चौथा ले लूं। ये हमारे जगत में स्थिति है हमारी। भगवान ने कह दिया हमें इस जगत में कि दुख ही है, सुख है ही नहीं, फिर भी हम सोचते हैं शायद इससे सुख नहीं आया, इससे आएगा, दूसरे चम्मच में आ जाए, तीसरे में आ जाए, मरने तक तो कभी तो आ जाएगा, यानी खत्म होने तक कहीं तो मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला, बनाने वाले ने डाला ही नहीं है इसमें मीठा। इसी तरह बनाने वाले ने सुख डाला ही नहीं है, हम क्यों उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, मूर्खता है हमारी। तो इस तरह से हमें ये सीखना चाहिए कि ये जगत इसमें सुख है नहीं, और हम जिस सुख को ढूंढ रहे हैं, विशेषतः इसमें वर्णन किया गया है कि जीव मैथुन सुख को ढूंढता है, स्त्री और पुरुष के बीच के आकर्षण के सुख को। ये बड़ा तीव्र आकर्षण है, बहुत बार सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी, ब्रह्मचर्य संन्यास लेने के बाद भी ये आकर्षण बना रहता, और जैसे ही अवसर मिलता है व्यक्ति उसकी ओर आकृष्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि ये ऐसा आकर्षण, इसके लक्षण दिए गए हैं इन तात्पर्यों में और श्लोकों में, कि एक ऐसा आकर्षण है जो पकड़ लेता है। जैसे एक पशु होता है, उसको जाकर पकड़ लिया जाता है, तो जब पकड़ लिया तो पूरी तरह से वो कब्जे में है, फिर वो पशु कुछ नहीं कर सकता, तो बांध दिया जाता है। तो ये मैथुन सुख ऐसा है, ये जीव को बांध देता है, कुछ नहीं कर पाता वो, हर समय बस यही आशा करता है कब मैं उस थोड़े से सुख के लिए अपना सारा जीवन बर्बाद करूं। व्यक्ति जीवन भर कार्य, दिन भर कार्य करता है, किस लिए? बाहर जाता है, धन कमाता है, बड़ी मेहनत करता है, किस लिए? वो थोड़ा सा सुख उसको मिल जाए, बस उस सुख के लिए इतना कष्ट। तो इसलिए बांधता है, और केवल बांधता नहीं है, इसका वर्णन किया गया है कि ये मोह में भी डालता है। बंधन में तो डाल ही देता है और मोह में डाल देता है। क्या मोह है? व्यक्ति सोचता है स्वजन पालन कोरी एक मने, बस जीवन का उद्देश्य है कि मैं अपने परिवार का पालन करूं, थोड़ा बहुत सुख कमाऊं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बस जीवन का उद्देश्य यही। कभी कभी वृद्ध अवस्था में जाकर व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने गलती की, जीवन भर बस इसी में पड़ा रहा, वो भी कभी कभी। ये देखिए इतना मोह में डालने वाला है कि हर व्यक्ति उससे बाहर नहीं आता वृद्ध अवस्था में भी। अकबर ने प्रश्न किया था बीरबल से कि ये जो ये सुख है, ये जो आकर्षण है, ये कब तक बना रहता? बीरबल ने कहा मरने तक। अकबर ने कहा मैं मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि साधारणतः ऐसा माना जाता है कि जो वृद्ध हैं उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है। तो बीरबल ने कहा ठीक है दिखाएंगे। तो एक दिन आए बीरबल की चलिए चलिए जल्दी, एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति मर रहा है, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो बादशाह चल दिए, बोले चलते चलते अपनी युवती पुत्री को भी साथ में ले लीजिए। ठीक है, उसको भी ले लिया। तो अंदर आए, वो बूढ़ा पड़ा हुआ है, आंखें आधी आंखें बंद हैं, उसने बड़े मेहनत करके आंखें जरा सी खोल कर देखा, बीरबल ने प्रवेश किया, बूढ़ा ऐसे ही पड़ा रहा। फिर थोड़ा सा मेहनत किया, देखा तो अकबर ने प्रवेश किया, बूढ़ा ऐसे ही पड़ा रहा। और फिर पीछे देखा कि बूढ़े की, अकबर की युवती पुत्री ने प्रवेश किया, बूढ़े की आंखें एकदम खुल गईं। बीरबल ने कहा देखिए मैं बता रहा था ना आपको, ये है मरते दम तक जाने वाला नहीं है ये चीज है। जब तक व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता, बाहर के जगत में देखिए क्या करते हैं वृद्ध लोग जो भक्ति में नहीं है, भले वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाते, टीवी देखते रहते हैं पूरा टाइम। क्या देखते हैं टीवी में? क्या है? यही आनंद, बस कम से कम देखकर आनंद ले रहे हैं। कई तो बूढ़े लोग ऐसे हैं कि टीवी छोड़िए, हम एक बार एक गोवा में एक व्यक्ति को मिले थे, नाम नहीं लेना चाहते हूँ, भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनको भारत सरकार ने कुछ पद भी दिया हुआ है, भारत भूषण या क्या पता नहीं जो भी होता। तो वो बात कर रहे थे, हम एक कार्यक्रम में थे इसलिए उनके साथ, कार्यक्रम शुरू होने के पहले पीछे बैठे थे, हमें भी उस कार्यक्रम में भाग लेना था, उन्हें भी लेना था, बड़े प्रसिद्ध हैं वो। तो वो होंगे कम से कम 80 के ऊपर, ऐसी अवस्था। गोवा में नहीं रहते, कहीं वो उस प्रोग्राम के लिए आए थे, तो वो उनकी कोई एक शिष्य उसको बुलाकर पूछ रहे थे कि ये कसीनो कितने बजे तक खुला रहता है, मुझे कसीनो में जाना। कसीनो समझते हैं आप लोग? आप लोग भक्त हैं शायद नहीं जानते होंगे, जहाँ जुआ खेला जाता है और बहुत कुछ किया जाता है वहाँ पर। तो गोवा में अनुमति है, भारत में एक ही स्थान है जहाँ पर कानूनन अनुमति है ये सब चीज़ों की, तो वहाँ जाना चाहता हूँ। हम ये सोच रहे थे कि स्थिति तो ऐसी है कि पता नहीं यहाँ से बाहर जाकर भी जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इच्छा क्या है, कसीनो में जाना चाहता। तो इसलिए बाहर अगर भक्ति में नहीं है तो कुछ है नहीं करने के लिए उनके पास। हाथ में माला नहीं है तो क्या होगा, रिमोट कंट्रोल चलाते हैं टीवी का हाथ में, बस उतना ही पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो मैथुन सुख की भावना है बड़ी तीव्र है, मोह में डाल देती है, बंधन में डाल देती है, और साथ ही साथ इसी के कारण लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, द्वेष करते हैं, असली आश्रय को भूल जाते हैं। तो ऐसा वर्णन किया गया है, इसको कल और विस्तार से चर्चा करेंगे जब इसको समझाया जाएगा। तो ऐसा पूरा ज्ञान देने के बाद जड़ भरत ने महाराज रघुगण से कहा कि अब अपनी सारी आसक्ति त्याग दो, अपनी ये जो स्थिति को लेकर बैठे हो ना कि मैं राजा हूं, त्याग दो इसे, आसक्ति त्याग दो। ज्ञान की तलवार से, जड़ भरत कहते हैं, ज्ञान की तलवार से भक्ति के द्वारा काट दो अपने बंधनों को। देखिए हम लोग कितना सुनते हैं ना ये बात, ये कई बार सुन चुके, पहली बार नहीं सुना है कि ज्ञान की तलवार से या भक्ति की तलवार से या स्मरण की तलवार से हमें अपने बंधन काटने चाहिए, लेकिन मोह इतना गाढ़ा है कि सुनने के बाद भी क्लास के बाहर जाते ही वो सब भूल जाते हैं। क्लास के बाहर क्या, क्लास में बैठे बैठे भी याद आता है कि घर में जाना है, अभी पत्नी बैठी होगी या बच्चे बैठे होंगे, अभी ये करना है वो करना है, बस जल्दी प्रभु जी खत्म करें, ये बंधन है। तो अब जड़ भरत ने कहा कि ये जो मैंने दिया इसका उपयोग करो, केवल ज्ञान लेना ये पूर्ण नहीं है। बहुत हम ज्ञानी हैं, हमें भागवत के बड़े श्लोक आते हैं, हम और पुराणों से, भगवद गीता से, जहां से कहिए आपको बता सकते हैं, और एक श्लोक को कई तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई लाभ नहीं। तो इसीलिए जड़ भरत कहते हैं सब सुन लिया तुमने, अब इसका उपयोग करो। तो जब तक ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में नहीं है, वो ज्ञान इस तरह है कि व्यक्ति ने तलवार खरीद कर रखी है लेकिन उसको चलाना आता नहीं है, और जब शत्रु आएगा तो क्या करेंगे, तलवार दिखाएंगे शत्रु को कि देखो देखो मेरे पास तलवार है, मुझे मारना नहीं, शत्रु तो मारकर चला जाएगा। इसीलिए तलवार को केवल रखना पूर्ण नहीं है, उसे आप थोड़ा डरा सकते हो। जब तलवार चलती है, इस बच्चे को क्या चाहिए कोई बता दीजिए, उसको बाहर जाके, जब तलवार चलती है या तलवार रखी होती है किसी के पास, चलाना नहीं आता तो थोड़ा बहुत डरा सकता है। मान लीजिए कोई अज्ञानी व्यक्ति आया जिसको, उसको भी तलवार चलानी नहीं आती, तो वो दिखाएगा भाई तलवार है मेरे पास, वो डर कर चला जाएगा, नहीं नहीं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जिसको तलवार चलानी आती, आक्रमण करने बोलेगा उठाओ तलवार, तो पता चले तलवार उठा नहीं पा रहे। इसी तरह ज्ञान से हम कुछ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, बस ये इस तरह है कि हम तलवार दिखाकर प्रभावित कर रहे हैं, देखो मेरे पास तलवार है, देखो मेरे पास ज्ञान है, इधर से श्लोक बोला, उधर से श्लोक बोला, ये कहा वो कहा, लोगों ने कहा क्या स्मृति है इस व्यक्ति की, कहां कहां से बोलता है, ये वेद से बोलता है, भगवद गीता से, पुराण से, बड़ी अच्छी स्मृति है इसकी, नंबर के साथ कहता है, ये अध्याय का ये श्लोक ये कहता है, बड़ी अच्छी स्मृति है। ये केवल तलवार दिखाने के समान, डराना लोगों को तलवार दिखा के, प्रभावित करना। जब तक उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में नहीं करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए अब वो राजा रघुगण को कहते हैं कि ज्ञान की तलवार से अपने बंधन को काटो, जो मैंने अभी सब बताया आपको इतना सब, अब उसका जीवन में उपयोग करो, तब लाभ है। तो इतना कहने के बाद अब जड़ भरत शांत हो गए, और उस समय राजा रघुगण ने कहना प्रारंभ किया, और रघुगण अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि जो हमें ज्ञान दें, जैसे जड़ भरत ने ज्ञान दिया, तो कैसी कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट की। सबसे पहले जड़ भरत कहते हैं, रघुगण कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिला मुझे, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ मैं, क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में मैं आप जैसे भक्त का संग कर पाया। ये अवसर देवताओं को भी नहीं मिलता है, राजा रघुगण कहते हैं। तो क्या लाभ है देवता बनने का, से अच्छा है मनुष्य बने, क्योंकि इसमें भक्तों का संग मिलता। वो कहते हैं कि देवता कभी कभी इतना ऐश्वर्य उनके पास होता है, इतनी सुविधा उनके पास होती है कि वो भक्तों के महत्व को समझ नहीं पाते, वो भक्ति कर नहीं पाते। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं सही है, देवताओं के पास क्योंकि इतनी, जिस व्यक्ति के पास बहुत सुविधा हो, बहुत सारा ऐश्वर्य हो, और देवताओं की सुविधा ऐश्वर्य का तो कहना ही क्या, और भोग की सुविधाएं हैं, इसलिए उन सुविधाओं में पढ़कर वो भगवान की भक्ति कर नहीं पाते। तो राजा रघुगण कहते हैं मनुष्य जीवन अच्छा है, मुझे देवताओं का जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आप जैसे भक्तों का मुझे संग मिला, और भक्तों के संग से प्रभाव क्या हुआ। फिर वो उनको कहते हैं कि आपके क्षण मात्र संग से इस जीवन में मेरे अंदर जो मैं तर्क करने की प्रवृत्ति थी मेरे अंदर, वो चली गई है, जो अज्ञान था वो चला गया, अविवेक बुद्धि चली गई, मिथ्या अहंकार चला गया। तो तीन चीजों को प्रमुखता ये कहते हैं कि यही इस जगत में बंधन के कारण है, और ये तीनों चीजों का नाश आपके संग से हो गया, अर्थात भक्तों के संग से ये तीन चीजों का नाश हो जाता है जो हमारे भौतिक बंधन के कारण है। पहला है तर्क करना, हम लोग बहुत तर्क करते रहते हैं। दूसरा मिथ्या अहंकार, और तीसरा अविवेक बुद्धि। तो राजा रघुगण कहते हैं ये तीनों ही इस जगत में बंधन के कारण हैं, और आपके कारण ये तीनों का नाश हो गया, संग से, केवल आपके क्षण मात्र संग से। तो तर्क क्या है, तर्क करना मतलब हम लोग हर चीज में तर्क करते हैं। कोई काके कहे कि भगवान है, कैसे हैं बताओ, अरे ये सब जगत चल रहे तो अपने आप चल रहा है, तर्क करने की। और दूसरा मिथ्या अहंकार, तर्क करते मिथ्या अहंकार के बल पर कि मैं श्रेष्ठ हूं। भक्ति में आने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम श्रेष्ठ नहीं, वो भी शुरुआत में नहीं, कई कई वर्ष बीतने के बाद तब हमें पता चलता है कि ये जो मुझे हरे कृष्ण वालों ने शुरुआत में बताया था कि अहंकारी हो, दास हो, अहंकार त्यागना है, शायद ये सच है, मुझे अहंकार त्यागना चाहिए। शुरुआत में हमें वो भी नहीं, मानते हैं, सुनते हैं दास दास दासानुदास, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति कुछ अच्छा बोल सकता है, वो जब ऐसी चीजों को सुनता है या अच्छा प्रवचन सुनता है, तो उसके मन में एक ही बात आती है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मैं अपने प्रवचन में कहूंगा। बस जीवन में उतारने के लिए नहीं सुन रहा है, वो सुनता है कि कितना अच्छा पॉइंट है, जब मैं ये जाकर बोलूंगा दूसरी जगह पर लोग बोलेंगे वाह 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 कितना बढ़िया बोल। जो प्रचारक है वो ये सुनते हैं, जो प्रचारक नहीं है वो जब ऐसे बड़ी अच्छी अच्छी कुछ प्रवचनों को सुनते हैं, तो उसको जीवन में उतारने की जगह वो कहते हैं कि ठीक है अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन हमारी तरह अगर सेवा करके दिखाएं तब पता चले। ऐसे कई कई भावनाएं आती। तो इसीलिए राजा रघुगण कह रहे हैं कि तर्क नहीं करना, मिथ्या अहंकार नहीं होना, और अविवेक बुद्धि। अविवेक बुद्धि मतलब बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य है भेद करना, अच्छे और बुरे में भेद करना, ये बुद्धि का कार्य है, इसे विवेक कहते हैं। विवेक मतलब क्या सही है क्या गलत है इसको स्वीकारना। लेकिन जो असुर होते हैं वो इसको नहीं जानते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो असुर होते हैं उनको पता नहीं होता है करना क्या है, तो इसीलिए वे लोग सारे गलत कार्य करते हैं क्योंकि वो अपने विवेक को खो बैठे हैं। बुद्धि होना केवल ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, एटम बम बनाने वालों को भी बुद्धि लगी होगी, जिन्होंने बम बनाए हैं बंदूकें बनाई हैं उनको भी तो बुद्धि लगी होगी। तो बुद्धि होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिरण्यकश्यपु की बुद्धि कम थी, कहाँ कहाँ से सोच के उसने कहा कि मैं मरूं नहीं। रावण की बुद्धि कम थी। तो बुद्धि होना ये पूर्ण नहीं है, विवेक होना चाहिए। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या स्वीकारना है क्या नहीं स्वीकारना है, ये हमें जानना चाहिए। इसको कहते हैं विवेक। और जब तक व्यक्ति भक्तों के संग में नहीं आता वो सही चीज़ों को जान नहीं सकता, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए ऐसी चीज़ें बड़ी अनिवार्य हैं कि हम भक्तों का संग करें और इस तरह से जान लें कि क्या सही है और क्या गलत है। और फिर उन्होंने क्षमा याचना की कि आप जैसे भक्त, मैं तो अहंकार में था, तर्क कर रहा था, ये सब नाश हो गया है मेरा। ये भक्ति से होता, जैसे अर्जुन ने भी भगवान से कहा नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद आत्मया च्युत, कि जितना भी मेरा मोह था सारा नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, स्थितोस्मि गत संदेह कोई संदेह नहीं रहा, करिष्ये वचनम तब। बस इस स्थिति में आना है हमें, इस स्थिति में आना अनिवार्य है भक्ति में। करिष्ये वचनम तब, जो आपने कह दिया वो करना है बस। इसको कहते हैं समर्पण, ये सच्चा समर्पण है। हाँ, लेकिन समर्पण भी सही व्यक्ति को होना चाहिए। ऐसा ही समर्पण कर्ण ने किया था दुर्योधन के प्रति, जो तुम कहोगे वो सही, करिष्ये वचनम तव, ये कर्ण ने दुर्योधन को कहा था, कहा होगा मतलब। तो ये सही नहीं है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को समर्पण करें। करिष्ये वचनम तव भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों को ही कह सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के प्रति कई भक्तों ने समर्पण किया जब प्रभुपाद इस पृथ्वी पर लीला कर रहे थे, और उन्होंने भी यही कहा प्रभुपाद से, यही भाव दिखलाया करिष्ये वचनम तव, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते थे, कृष्ण कौन है नहीं जानते थे, राधा रानी कौन है नहीं जानते थे, भक्ति क्या है नहीं जानते थे, पुराण शास्त्र महाभारत क्या है नहीं जानते थे। दरअसल हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता है ये सुनकर कि ऐसे भी कोई व्यक्ति होंगे जिनको महाभारत रामायण नहीं पता, लेकिन है। हम खुद ऐसे लोगों से मिले जब भारत के बाहर गए, तो ऐसे लोग जिनको अगर महाभारत रामायण राम कृष्ण ये कहा जाए तो वो ऐसे देखते हैं कि कौन सी दुनिया से बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता। तो प्रभुपाद जब गए तो किसी को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने समर्पण किया प्रभुपाद के प्रति, करिष्ये वचनम तव। प्रभुपाद ने कहा वहां जाओ प्रचार करो, वो चले गए वहां प्रचार करने के लिए। वो शहर में जाओ कुछ भी नहीं है, जाओ ढूंढो प्रचार करो, प्रभु चले गए प्रचार करने। चाइना में जाओ, चाइना में चले गए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, तमाल कृष्ण महाराज ये अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में चाइना को थोड़ा नीचे दृष्टि से देखते हैं। तो अमेरिका में एक कहावत थी उस समय, अभी पता नहीं है कि नहीं, कि अगर किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं करना है तो कहता था कि इससे अच्छा तो मैं चाइना चला जाऊँ, है ना। जैसे हम लोग को कुछ नहीं करना तो ये करूँ, इससे अच्छा तो, जैसे समझ लीजिए एकादशी के दिन प्रसाद बनता है, व्यक्ति कहता है इससे अच्छा तो भूखा रहूं मैं, ऐसे कहा जाता है ना। तो अगर कोई काम नहीं करना है तो उसमें अमेरिका में कहते थे इससे अच्छा मैं चाइना चला जाऊं। तो प्रभुपाद से बात कर रहे थे, प्रभुपाद उनको कुछ कहने के लिए कह रहे थे और ये कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा नहीं होगा। तो अचानक उन्होंने कह दिया, आदत होती है तो आदतन कह दिया कि इससे अच्छा तो मैं चाइना चला जाऊं। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा, जाओ चाइना में प्रचार करो। तमाल कृष्ण महाराज कहा नहीं नहीं प्रभुपाद, ये तो एक कहावत है। बोले नहीं अभी हो गया, अभी जाओ। और तमाल कृष्ण महाराज चले गए, आदेश का पालन, करिष्ये वचनम तव, और चाइना में इतना प्रचार किया उन्होंने। और चाइना उस समय ऐसा था, आज भी है लेकिन आज थोड़ा कम हुआ, उस समय तो ऐसा था कि अगर आपके बैग में भगवद गीता देख ली जाए तो आपको अरेस्ट, अंदर। रशिया चाइना ये सब ऐसे स्थान था। तो उस समय प्रचार किया। तो इसीलिए करिष्य वचनम तव केवल भगवान और उनके भक्तों को कहना चाहिए। तो राजा रघुगण ने समय याचना की और सारा उनका मोह समाप्त हुआ है। और फिर उसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जिस समय राजा रघुगण ने पालखी उठवाई जड़ भरत से, उनकी निंदा की, जड़ भरत को थोड़ा कष्ट हुआ था, थोड़ा कष्ट हुआ था, लेकिन अब जब उन्होंने क्षमा मांग ली, जड़ भरत पूर्ण शांत हो गए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जड़ भरत जैसे व्यक्ति भी, जड़ भरत तो मुक्त जीवात्मा बहुत ऊंचे स्तर पर भक्ति के, तो कहते उस स्तर पर भी, क्योंकि भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत लग सकता है, अपमान हो सकता है, लगता है। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि अगर हम किसी भक्त के प्रति कुछ कार्य करें तो जाकर क्षमा याचना मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। तो जब क्षमा मांग ली रघुगण ने, तो उन्होंने सारे अपराधों को, वैष्णव वही है, वैष्णव का अर्थ ही है कि जब कोई उनके पास क्षमा मांगने आए तो तुरंत क्षमा कर दें, क्योंकि वैष्णवों को कृपा का भंडार कहा जाता। तो इसीलिए जड़ भरत ने क्षमा कर दिया और संतुष्ट होकर फिर जड़ भरत चले गए ऐसे ही भ्रमण करने के लिए, और फिर राजा अपने स्थान पे वापस गए। तो ऐसे कहकर जब उन्होंने कथा पूरी की तो अंत में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि वो कहते हैं कि आपने जो परम भक्त साधु इन सब की अभी ये कथा सुनाई है, इसको हम अनुवाद पढ़ते हैं। आप सर्व ज्ञाता हैं, आपने जंगल के वाणिक के रूप में बद्ध जीव की स्थिति का अत्यंत मनोहर वर्णन किया है। इन उपदेशों से कोई भी बुद्धिमान मनुष्य समझ सकता है कि देहात्म बुद्धि वाले पुरुष की इंद्रियां उस जंगल में चोर उचक्कों सी हैं और उसकी पत्नी तथा बच्चे सियार तथा अन्य हिंसक पशुओं के तुल्य हैं। किंतु अल्प ज्ञानियों के लिए इस आख्यान को समझ पाना सरल नहीं है, क्योंकि इस रूपक का सही सही अर्थ निकाल पाना कठिन है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए परीक्षित महाराज बता रहे हैं मुझे समझ में आ गया, इसीलिए उन्होंने थोड़ा बताया कि क्या, लेकिन आगे आने वाले लोग इतने बुद्धिमान नहीं होंगे कि इसी में समझ जाएं सब, तो थोड़ा उसको अच्छी तरह से बताइए, जंगल क्या है, पत्नी क्या है, ये सियार क्या है, ये जो सब वर्णन आपने किया उसको समझाइए। तो अब अगले अध्याय में, बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है, भौतिक संसार भोग का एक विकट वन, तो ये 14वां अध्याय फॉरेस्ट ऑफ मटीरियल एंजॉयमेंट, तो इस पे कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? अनिच्छन्नपि वाष्णेय, अर्जुन ने भी यही कहा था भगवान से कि इच्छा नहीं होती, अनिच्छन्नपि, ऐसा प्रतीत होता है कि उसको जबरदस्ती लगाया जा रहा है काम में। अविवेकी पुरुष जो समझता है, विवेकी पुरुष जो समझता है ठीक क्या है गलत क्या है, फिर भी अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं भी होते हुए जबरदस्ती कोई कार्य कर देता है, तो इसका क्या कारण है? तो भगवान ने बताया था काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा। हमारे हृदय में अज्ञान के कारण जो काम वासनाएं हैं, जो अज्ञान है, वो हमें खींचता है। तो इसीलिए उसको परास्त करने के लिए उपाय ये है कि हम जितना ज़्यादा हो उसको सकारात्मक चीज़ों में लगाएं, जैसे भक्ति के चीज़ों में। जितना व्यक्ति, और ये ऐसा नहीं होता कि आपने आज जब शुरू किया तो दो साल के अंदर आपका मन एकदम वश में आ जाएगा, कोई ऐसा नियम नहीं है। नियम यह है कि हम जितनी गंभीरता से भक्ति का पालन करते हैं उतनी तीव्रता से मन को हम वश में कर सकते हैं। तो मन को वश में करने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा दो चीजें, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गुह्यते, अभ्यास करो और वैराग्य प्रकट करो। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रभुपाद ने इन दो चीज़ों को दिया है, अभ्यास और वैराग्य, जिसके द्वारा मन को वश में कर सकते हैं। तो अभ्यास क्या है? भगवान के नाम का जप करना, इसका अभ्यास, श्रवण करना, इसका अभ्यास बारंबार। ऐसा नहीं कि हम 16 माला कर रहे हैं, 32 माला कर रहे हैं तो सब ठीक है, नहीं, बारंबार और उसमें रुचि बढ़ाना। तो अभ्यास वो है। और वैराग्य क्या है? चार नियमों का कड़ाई से पालन करना, मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, वैद्य संग नहीं करना, इनका कड़ाई से पालन। तो जब ये धीरे धीरे करते रहेंगे तो एक समय आएगा, वैसे भी मन तुरंत वश में आना प्रारंभ हो जाता है लेकिन पूर्ण रूप से वश में आने को समय लगता है। मार्ग वही है जो आचार्यों ने दिया, बस उसको गंभीरता से हम करते रहें, मन अपने आप वश में आएगा। हमें मन की चिंता करने का प्रयास नहीं करना, हमें जप करना है। प्रभुपाद ने ऐसा बतलाया कि आप जप करते रहो, मन की चिंता मत करो, बस जप पर ध्यान दो, मन अपने आप वश में आ जाए। ठीक है, तो मन को जो तार दे उसे मंत्र कहते हैं, मनः त्रायते इति मंत्र। तो इसलिए प्रभुपाद ने मंत्र दिया, महामंत्र। जितना ज़्यादा हम लोग जप करें, आने दीजिए जो भी बातें आती हैं, लेकिन आप केवल मन मंत्र पर ध्यान दें तो अपने आप फिर ठीक होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। Thank you.